ओम शांति। ग्रुप नंबर 4। सभी अपने को ज्ञान बल और योग बल दोनों में सदा आगे बढ़ने वाले अनुभव करते हो। दुनिया में और अनेक प्रकार के बल है, साइंस का भी बल है, राज्य का भी बल है, भक्ति का भी बल है, लेकिन आप में क्या बल है? ज्ञान बल और योग बल, ये सबसे श्रेष्ठ बल है। तो योग बल में जो बल होता है, शक्ति होती है, वो किस लिए होती है? विजय प्राप्त करने के लिए। जैसे साइंस का बल है, तो साइंस का बल अंधकार के ऊपर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है। ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर विजयी बनाता है। तो माया जीत बनने का बल है कि कभी हार होती कभी जीत, सदा की विजयी। कभी कभी विजयी को विजयी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बाप द्वारा ये ज्ञान बल और योग बल इतना श्रेष्ठ मिला है जो माया की शक्ति उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो योग बल बड़ा है या माया कभी कभी खेल करने आती है? माया जीत आत्मा है, कभी स्वप्न में भी हार नहीं खा सकती, स्वप्न में भी कमजोरी नहीं आ सकती। स्वप्न भी कैसे होंगे? सुहेल और विजयी के और शक्तिशाली, ऐसे बहादुर हो या कभी कभी की छुट्टी दे रखी है? सदा के विजयी, अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है ना। नशा है कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो जन्म सिद्ध अधिकार कभी खो नहीं सकता। सदा यह स्मृति रहे कि विजयी है और सदा विजयी रहेंगे। या सोचते हो पता नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे, कभी यह संकल्प आता है पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं माया आ जाए तो, कभी संघ का रंग लग जाए तो? ऐसे तो नहीं आता है। अगर ऐसा कोई संग मिल जाए तो क्या करेंगे? उसको भी कुसंग से सत के संग में लाएंगे, क्योंकि जब तक फाइनल रिजल्ट निकले तब तक पेपर तो आएंगे ही। पेपर का काम है आना और आपका काम है पास विद ऑनर होना। तो क्या सुना बाबा? ज्ञान बल और योग बल की बात कर रहे हैं। दुनिया में अनेक प्रकार के बल है, कौन कौन से? साइंस का बल है, बाहुबल, बुद्धि बल, राज्य का बल, सत्ता का बल, भक्ति का बल, भक्ति की शक्ति जिसको कहते हैं। लेकिन आप में क्या बल है? ज्ञान बल और योग बल, ये सबसे श्रेष्ठ बल है। योग बल से में कौन सी शक्ति है? विजय प्राप्त करने की। किसके ऊपर? जैसे साइंस का बल साइलेंस, साइंस का बल अंधकार के ऊपर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, पहाड़ों पर फूल खिला देता है, रेगिस्तान को गुलिस्तान बना देता है, सब्ज बना देता है, वैसे साइलेंस में कौन सा बल है? योग में ना उम्मीद को उम्मीदवार को उम्मीदवार बना देता है। ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर विजयी बनाता है, माया अर्थात विकार। तो माया जीत बनने का बल है कि कभी हार कभी जीत, सदा की विजयी। कल विष्णु का उदाहरण दिया था ना बाबा ने, हर्षित है, निश्चिंत है और विजयी है। सांपों को शैया बना दी है, लोग सांपों को हाथ लगाने से डरते हैं, उसने सांपों को शैया बना दी है। सदा की विजयी, निश्चिंत स्थिति है वो, आराम की स्थिति है, बेहद के रूहानी आराम की स्थिति। एक तो निर्बंधन, दूसरा निश्चिंत, ये दो स्थिति है। हाँ, निश्चिंत के लिए बाबा ने ये दो चीज कही थी, कही आराम की स्थिति। तो सदा के विजयी, कभी कभी के विजयी को विजयी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बाप द्वारा ये ज्ञान बल और योग बल इतना श्रेष्ठ मिला है कि माया की शक्ति उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो योग बल बड़ा है या माया कभी कभी खेल करने आती है? माया जीत आत्मा है, कभी स्वप्न में भी हार नहीं खा सकती। स्वप्न में भी कमजोरी नहीं आ सकती, स्वप्न भी शक्तिशाली। ऐसे बहादुर हो या कभी कभी की छुट्टी दे रखी है, सदा की विजय, आपके मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है। नशा है कि विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, तो जन्म सिद्ध अधिकार कभी खो नहीं सकता, सदा यह स्मृति रहे, विजयी है और सदा विजयी रहेंगे। कल भी अंगद के लिए कहा ना, कल्प पहले जो विजय का गायन है, विजय का नगाड़ा अब सुन रहे हो, वही विजय का नगाड़ा अब सुन रहे हो, बना बनाया है, केवल रिपीट कर रहे हो। भक्ति में जो भी यादगार है विजय के, वो सब हमारे यादगार है, चाहे वो अंगद है, चाहे वो विष्णु है, चाहे वो कृष्ण है, चाहे वो शंकर है, जो भी। तो विजयी है, किस पर विजयी? विकारों पर विजयी। या सोचते हो पता नहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये निश्चिंत अनिश्चिंतता की स्थिति है, संशय है यहाँ पर, क्योंकि उस संस्कार ने और उस विकार ने हराया था, बहुत बुरी हार हुई थी, वो हार की स्मृति है, इसके लिए डर रहता है थोड़ा सा। ज्ञान योग तो है, परंतु वो बहुत शक्तिशाली है, ये याद रहता है अंदर ही अंदर। तो रहेंगे नहीं रहेंगे, कभी ये संकल्प आता है, पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं माया आ जाए तो, माया के उस रूप को देखा था एक बार, इसके लिए अभी डर है, क्योंकि उस समय उसने हरा दिया था। कभी संग का रंग लग जाए तो, ऐसा तो, ऐसे तो आता है, अगर ऐसा कोई संग मिल जाए तो क्या करेंगे, उसको भी कुसंग से सत्य के संग में लाएंगे, क्योंकि जब तक फाइनल रिजल्ट निकले तब तक पेपर तो आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेपर आना बंद हो जाए। कुसंग का डर, संसार के वातावरण, एक ज्ञानी व्यक्ति को संसार के व्यक्तियों के साथ रहना बड़ा मुश्किल होता है, ज्ञानी को अज्ञानियों के साथ रहना थोड़ा मुश्किल काम है, अज्ञानी अज्ञानियों के साथ रहे तो कोई मुश्किल नहीं है, पर एक ज्ञानी, पहले अज्ञानी था तब ठीक था, पर वो जब ज्ञानी बन जाता है और फिर अज्ञानियों के साथ चला जाए तो वहां फिर थोड़ी मुश्किल है। जैसे दिखाते हैं एक पागल खाने में एक व्यक्ति को भर्ती किया, वो पागल हो गया था, पहले ठीक था, 3 साल का उसको मतलब सजा कहो या पागल खाने में भर्ती रखना था 3 साल के लिए, तो 2.5 साल तो उसे कोई तकलीफ ही नहीं हुई, पर 2.5 साल के बाद एक ऐसी घटना वहां घट गई कि एक दिन वो कोई फिनाइल का डब्बा था वो पूरा पी लिया उसने, और उसको इतने दस्त हो गए कि उसके बाद में वो ठीक ही हो गया। तो आखिरी के जो 6 महीने है वो उसके पहले ठीक हो गया, अब उसे कठिनाई होने लगी वहां रहने में, क्योंकि कोई पागल उसके पैर खींचता है, कोई उसे मालिश करता है, कोई उसके बाल खींचता है, कोई उसे गुदगुली करता है, कोई कुछ करता है, अब तक भी चल रहा था तब कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो भी उनके जैसा ही था, अब वो ठीक हो गया है, वो जाके कहता है अधिकारियों से कि मैं ठीक हुआ हूं, तो अधिकारी कहते हैं सब पागल यही कहते हैं, जाओ अपने कमरे में। वो कहता है कि अभी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, वो कहते सब ऐसे ही कहते, जाओ अपने कमरे में। अब वो कैसे सिद्ध करके बताया कि अभी मैं पागल नहीं हूं, मैं ठीक हो गया हूं, अब तक कोई मुसीबत नहीं थी 2.5 साल, वही सब चालू था, पर अब जब उसके बाल खींचते हैं और कोई उसका पैर खींचता है, टांग खींचते हैं, कोई उसके ऊपर कुछ और करता है, तब उसे बहुत ही मुश्किल है वहां रहना। वैसी स्थिति ज्ञानी की अज्ञानियों के साथ है। क्या किया जाए, जब तक अज्ञानियों के बीच में उन्हीं के जैसे हम हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्ञान प्राप्त होने के बाद फिर उनके बीच में रहना, इसमें तो थोड़ी मुश्किल है, तो ये भी डर रहता है। हाँ, बहुत मुश्किल है। बाबा जो कहते हंस और बगुला, कलयुगी और संगम युगी एक ही घर में। पहले जब उनके पास रहते थे तो कोई डर नहीं था, पर अभी ज्ञान मिल गया तो यहाँ कह रहे कभी संग का रंग लग जाए तो उसका भी अंदर ही अंदर डर है, क्योंकि हमने वो सब किया है जो वो कर रहे थे। ज्ञान तो अभी भी मिला है, वो संस्कार अभी इतने पक्के नहीं हुए, पर वो संस्कार तो जन्म जन्म के पागलपन के। इसके लिए डर रहता है कभी हम भी उनकी तरह फिर से वही सब ना करने लगे जो हम करते थे पहले, क्योंकि जब तक फाइनल रिजल्ट ना निकले तब तक पेपर तो आएंगे ही। पेपर का काम है आना और आपका काम है पास भी तो होना। होना कैसा भी संग खराब हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उनके आगे कितना गुना शक्तिशाली है। ईश्वरीय संग के आगे और सब संग कुछ भी नहीं है। इस संग के आगे बाकी और संग कुछ भी नहीं है। कल कहा ना, तुम्हारा है शुद्ध संकल्प, तुम्हारा है दृढ़ संकल्प। वो भक्तों के संकल्प पूरे होते हैं, उनकी आश पूरी करते हैं। सारे दिन भर न चाहते हुए भी किसी का व्रत लेते हैं तो वो याद रहता है। और तुम्हारा है शुद्ध संकल्प, दृढ़ संकल्प, तो उसमें कितनी पावर है, कितनी शक्ति है। वो तो उसका तो प्रत्यक्ष फल मिलेगा ही, ईश्वरीय संघ है ना। तो ईश्वरीय संघ के आगे और सब संघ कुछ भी नहीं है, सब कमजोर है। खुद कमजोर बनते हो तब उल्टे संघ का वार होता है। वार कब होता है? खुद अंदर कमजोर बनते हैं तब। तो माया जीत अर्थात सिवाय एक बाप के और किसी भी संघ के रंग से प्रभावित होने वाले नहीं, ये माया जीत की परिभाषा है। सिवाय एक बाप के और किसी भी संघ के रंग से प्रभावित होने वाले नहीं, इसलिए सत्संग गाया जाता है। सत्संग की महिमा देखो कितनी है। आप तो सत्संग अर्थात सतबाप के संग में रहने वाले हो, ऐसा है ना। एक बाप का संग है सत्संग और दूसरे सब संग है व्यर्थ व कुसंग। कई कुसंग से बच जाते हैं लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि व्यर्थ बातें कैसी होती है? चटपटी, मसालेदार और रोचक और रसदार, टेस्टी, आकर्षक, दिलचस्प। बाबा कहते हैं रमणीक, बहुत रमणीक होती है, वैरायटी होती है उसमें, आनंद आनंद व्यर्थ आनंद, क्योंकि व्यर्थ बातें रमणीक होती है, परंतु उसे भी दिल तक तो नशीन नहीं कहा जाएगा। वो सेकंड स्टेज है, महसूसता वाली, कर्म से पहले, कर्म करते समय और कर्म चाहे कर्म के बाद जो भी है, व्यर्थ से जो भी होगा उसमें महसूसता होगी, परंतु वो सदा दिल तक तनशीन वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि व्यर्थ बातें रमणीक होती है। और आजकल कथाएं कितनी रमणीक सुनाते हैं, संसार में बहुत सारी रमणीक कथाएं हैं सत्संगों में। तो व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग बाहर से आकर्षित करने वाला है। इसके लिए बाप की शिक्षा क्या है व्यर्थ के लिए? व्यर्थ ना सुनो, ना देखो, ना बोलो, न सोचो, न करो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो। कल कहा था ना, व्यर्थ खुद फंसते हैं व्यर्थ में, व्यर्थ को खुद जाल बनाते हैं। क्या क्यों उसमें व्यर्थ की लिखा, खुद जाल बनाते हैं और खुद ही उसमें फंसते हैं। ये जो जाल बना हुआ है वो हमारा स्वनिर्मित है। परिस्थितियां जो आ रही है वो दूसरों से उसका कोई संबंध नहीं है, सब कुछ यहाँ हम ही उत्पन्न कर रहे हैं। तो न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ करो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सोचो। बुरे की तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन व्यर्थ में कभी कभी फंस जाते हैं। बाहर का शो बहुत अच्छा होता है। तो सदा की विजयी आत्माएं, मायाजीत आत्माएं, जगत जीत शक्तियां या वा पांडव ऐसे मायाजीत हो, क्योंकि माया भी नए नए रूप से आती है, पुराने रूप से नहीं आती। पुराने को तो जान गए हो, तो नए नए रूपों से आएगी। जिस रूप से आज आने वाली है वो एकदम ही नवीन रूप होगा, संपूर्ण अभिनव रूप, जो आज तक नहीं आया था। इसमें निर्णय करने की शक्ति चाहिए कि यह माया है या परमात्म ज्ञान है। ये माया है या परमात्म ज्ञान है, ये निर्णय शक्ति, क्योंकि माया भी वैसा ही लगता है, ये परमात्म ज्ञान जैसा लगती है, वो भी सुनती है ना सारा। बाबा कहते हैं माया भी सुन रही है। तो कितने टाइम में परख सकते हो? माया के अनेक रूपों को, कल याद प्यार में था ना, अनेक रूपों को परख कर आने से पहले ही उसे समाप्त कर देना, ये ज्ञानी तो आत्मा मास्टर नॉलेजफुल की निशानी है। हाँ, वो याद प्यार में कहा था ये वाक्य, ये मास्टर नॉलेजफुल की निशानी है। माया के हर स्वरूप को आने से पहले ही परख के समाप्त कर देना, या थोड़ा चक्कर खाकर पीछे परखेंगे माया की चक्री, अगर थोड़ा भी चक्कर में आ गए तो समय व्यर्थ चला जाएगा और नंबर पीछे हो जाएगा। फिर मेहनत करके आगे बढ़ सकते हो, मेहनत करके आगे तो बढ़ सकते हो, लेकिन क्या हो जाएगा, समय चला जाएगा और गलती तो हुई, आगे भी बढ़े, पश्चाताप किया, हाँ फिर भी दाग तो लग गया ना, कितना भी मिटाओ लेकिन मिटाने का भी मालूम पड़ता है। मिटाने का भी मालूम पड़ता है, इसलिए सदा के पीछे अधिकारी है ना, तो अधिकार कोई भी छोड़ता नहीं, अधिकार कोई भी छोड़ता नहीं। लेते समय सब चाहिए, फ्राकदिल बनकर सब ले लेते, बाप दादा यदि किसी की खातिरी करते हैं तो क्या कहते हैं, हम अधिकारी नहीं है क्या? लेने के लिए अविनाशी वर्षा सब चाहिए, पर देते समय इकोनॉमी करते हैं, देते समय थोड़ा थोड़ा देते हैं, देते समय बाप से कहते हैं कि बन जाएंगे, हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, विनाशी वर्षे से किनारा कर देते। तो अधिकार कोई भी छोड़ता नहीं है, लेने और देने, जैसे लेने में फ्राक दिल हो वैसे देने में भी फ्राक दिल, क्या देने में, क्या देने में, कमजोरियां देने में, परिवर्तन करने में भी फ्राक दिल। सभी को विशेष यह खुशी रहती है कि बाप मिला, सब कुछ मिला, मिला है या मिलना है, सही बोलो, मिल रहा है, चालू है प्रोसेस। अगर कोई मिल गया,
मिला है,
अच्छा, अगर कोई आ करके कहे कि नहीं और कुछ रहा हुआ है, आओ हम आपको दे, तो टेस्ट तो करेंगे ना, थोड़ी टेस्ट करने में हर्जा क्या है, एक बल एक भरोसा कि थोड़ी थोड़ी दूसरी भी है, दूसरा भी है, और बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाए तो सुनेंगे, सुन करके उसको बदलने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, सुनना भी नहीं, सुना तो चक्कर में आ जाएंगे। दूसरी अच्छी अच्छी बातें बाबा कह रहे, जो सुनाया था वो सुन लिया, इसलिए कहते हैं ना, जो पाना था, जो सुनना था, जो करना था वो कर लिया, इतना भरपूर रहो, जरा भी खालीपन होगा तो और कुछ भर जाएगा, भरपूर में और कुछ भर नहीं सकता। ज्ञान को इतना भर दो कि और कुछ वहां आए ना, तो कोई के भी संग के चक्कर में आने वाले नहीं, कोई के भी संग के चक्कर में आने वाले नहीं। टीचर बहनों को कहते हैं ना बाबा, टीचर बहनों को सफलता तब मिलेगी जब प्यार से सेवा करेंगे, अगर प्यार से सेवा नहीं करते तो सफलता नहीं मिलेगी, अगर प्यार में फंस कर सेवा करते हैं तो भी सफलता नहीं मिलेगी, प्यार में फंस कर, कुछ और अर्थ है इसका, एक्स्ट्रा प्यार, मोह, प्रेम, आसक्ति, प्यार, कुछ वजह से, पर मर्यादा छोड़कर किसी को सुख देना वो भी श्रीमत नहीं है। तो कोई के भी संग के चक्कर में आने वाले नहीं, ऐसे पक्के रहने में ही मजा है। पर उसका मतलब ये भी नहीं कि डर के मारे भागो, वो भी हो सकता है ना, क्योंकि डर है, यहाँ श्रीमत दे चुकी है, मिली है, दिखा कि भागो, वो भी बहादुरी नहीं है। हाँ, क्या कहा, मुझे देखकर? हाँ, डरने की यहाँ बात नहीं, विवेकानंद के जीवन में दिखाते हैं ना, विवेकानंद जब विवेकानंद नहीं थे, जगह प्रसिद्ध नहीं थे, तब यहाँ पर जयपुर में आए थे, जयपुर के महाराजा के पास। अभी वो जो जयपुर का महाराजा है, उसे क्या पता सन्यासियों का स्वागत कैसा करना चाहिए, उसने तो केवल इतना सोचा बड़ा सन्यासी है तो शराब और वो नाच गाने वाली वेश्याएं सबको बुलाया स्वागत के लिए। अब उसने कभी ऐसा स्वागत किया ही नहीं, उसे तो ऐसी आदत थी कि जो भी आए उसका आवभगत इस तरह से किया जाए, तो ये तो डर गया अंदर से, उसको तो डर है ना, वो सन्यासी है, उसके लिए तो द्वारम की मैं कम नरक से नारी, नारी मतलब नरक, उसके पास जाना ही नहीं है, तो उसके मन में तो एक जैसे कि, परंतु वो ये भी लिखता है, उसने अपना अनुभव बाद में लिखा, अप्रौढ़ की अवस्था है, इतनी मैच्योरिटी नहीं है, इतनी तटस्थता नहीं थी उस समय, तो वो लिखता है कि वो जब चल रहा था वो गया ही नहीं उधर, अपने कमरे में दरवाजा बंद करके, ताकि वो उसका आवाज भी नहीं सुनाई दे, वो नर्तकी जो नाच रही है और जो गाना गा रही है, तो फिर भी वो आवाज उस तक पहुंचता है, और वो जो वेश्या जो गाना गा रही होती है वो इतना गहरा गीत होता है, वो जैसे सन्यासी के लिए गीत होता है, और वो वेश्या कह रहे है कि हे सन्यासी, क्या तुम मुझसे डरते हो, मैं इतनी पतित हूं, अगर तुम जैसी पावन आत्मा ही मेरा से किनारा कर ले तो मेरा उद्धार कौन करेगा, ऐसा वो ऐसा इतना गहरा गीत होता है वो, तो उसकी उसको ऐसे होता है कि ये मैं क्या कर दिया, मैं तो इतना भयभीत हो रहा हूं उससे। जैसे कि वो लिखता है अपने अनुभव में बाद में डायरी में कि मुझे उस दिन जैसे कि आंख खुल गई और उसको आंसू आ गए, और देखता है कि इतनी विशुद्ध आत्मा है ये, तो उसके प्रति उसका जो दृष्टिकोण था, जो भय की भावना थी, वो समाप्त हो जाती है। वो कहता है कि जो मेरे गुरु ने मुझे नहीं सिखाया इसने सिखा दिया आज, अब तक तो मैं भाग रहा था इनसे, तो मुझे तो सब पर ही दया करनी है, सब पर ही रहम करना है, सबका ही कल्याण करना है। तो उसकी जो मतलब उसके हृदय में वो लिखता है विवेकानंद की, पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई एक नया अनुभव हुआ है, एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो अनुभव आज तक कभी नहीं हुआ था, कि ये भी सोचना ये स्त्री है और ये पुरुष है और ये वेश्या है और ये बहुत ही शुद्ध पवित्र आत्मा है, ये भेद भी क्यों, जब तो मैं ब्रह्म को कह रहा हूं, वो समझता है कि सब कुछ ब्रह्म है, अगर सभी ब्रह्म है तो ये भेद क्यों फिर, तो ये भी जो भागना है इससे भी ऊपर निकल जाना है। तो क्या कह रहे बाबा, कोई के भी संग के चक्कर में आने वाले नहीं, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि भागना है, ऐसे पक्के रहने में ही मजा है, अगर कच्चे रहेंगे तो कभी कोई यहां से आएगा कोई वहां से आएगा, किधर आएगा, दिल में, पक्के को कोई कुछ नहीं कर सकता, सारी कमजोरियां हमारे अंदर है, हमारे अंदर ही है, ये स्त्री ये पुरुष ये वो ये ऐसा, अगर दादी जानकी या कोई भी बड़ी दादी किसी होटल में चले गए तो वहां का प्रभाव पड़ेगा क्या, उन्हें चाहे कुछ भी चल रहा हो वहां का वातावरण परिवर्तन हो जाएगा।
थाईलैंड में गया था ना,
और अगर हम गए और हम कहे कि नहीं नहीं यहाँ का वातावरण तो मुझे बहुत प्रभावित कर रहा है, तो ये दोष किसका है, उस वातावरण या हमारा, हमारी अप्राउड अवस्था है, इमैच्योर स्टेट है अभी। अभी वो हम नहीं बने जो बनना है, वो तटस्थता अब तक नहीं आई है, अभी भी परिस्थितियां हिलाती है, अभी भी हलचल उत्पन्न होती है, और दोष हम परिस्थितियों पर दे रहे हैं कि इस परिस्थिति से ऐसा हुआ। हाँ, वो भी नहीं करना चाहिए। जब पौधा छोटा होता है तो उसकी रक्षा करनी होती है, ये साधना का मार्ग है, परंतु लक्ष्य फिर भी ध्यान में रखना है बुद्धि में कि अवस्था यहां तक पहुंचना है, परंतु ये भी ध्यान में रखना है कि ये साधना का मार्ग है। तो जो साधक होता है, हम सब साधक है, तो छोटा पौधा जो होता है उसकी रक्षा भी करनी होती है, नहीं तो जानवर आके उसको खा जाएंगे। और जब वृक्ष वटवृक्ष बन जाता है वो, तब तो हाथी भी बांधो उसको तो कुछ नहीं होगा। हाथी, तीन हाथी बांध के खींचे झाड़ को तो वृक्ष को कुछ नहीं होगा। परंतु ये भी ध्यान रखना है कि लक्ष्य हमारा वो है। इसके लिए साधनाओं के मार्ग में जो नियम और मर्यादा है उनका बहुत ज्यादा महत्व है, परंतु ये भी नहीं कि वो संपूर्णता है। संपूर्णता कुछ और है, वो ये सबसे परे है। उसका भी ज्ञान और इसका भी ज्ञान दोनों चाहिए। अगर कच्चे रहेंगे तो कोई कभी यहां से आएगा, कोई वहां से आएगा। पक्के को कोई कुछ नहीं कर सकता, ना प्रकृति हिला सकती है, ना माया हिला सकती है। जो छत्र छाया में रहते हैं उनके लिए क्या कहा कल बाबा ने, ना प्रकृति, ना माया, ना सूक्ष्म वाइब्रेशंस, ना व्यक्ति, ना वैभव, ना स्वभाव, ना संस्कार, कोई भी अंदर नहीं आ सकता। अंदर रहते हुए सर्व कार्य करते हैं, अंदर रहते हुए भी विश्व का भ्रमण कर सकते हैं, जो बेहद की छत्र छाया में रहते। छत्र छाया अर्थात याद। तो प्रकृति हिला नहीं सकती, माया हिला नहीं सकती। विकार, चाहे कैसा भी विकारी वातावरण हो, उसका प्रभाव अंदर नहीं होगा। अगर एक है, उसमें भी और दो बातें, एक तो विकारों पर विजयी और एक है विकारों से भाग रहे हैं, डर है उनसे। अवस्था लक्ष्य है विजयी का, विजय हो जाना कि वो आए नहीं। जो कल जो कहा था ना, जो भेद बताए दो, बाबा ने नहीं कहे, परंतु पश्चाताप और प्रायश्चित। प्रायश्चित वो अवस्था है कि जिसमें क्षमा मांगने की फिर जरूरत ही नहीं है। पश्चाताप करते तो फिर क्षमा मांगते हो, फिर पश्चाताप, फिर क्षमा। पश्चाताप क्योंकि कर्म से संबंधित है, कर्म गलत किया, बेईमानी की, पश्चाताप किया, झूठ बोला, पश्चाताप किया, क्रोध किया, पश्चाताप किया। परंतु जो प्रायश्चित है वो वह अवस्था है कि जिसमें पुराने आदमी की मृत्यु हो गई है, जिसमें अभी क्षमा मांगने की जरूरत ही नहीं है। बाबा ने कहा ज्ञानी तो आत्मा उसे नहीं कहेंगे जो पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप तो द्वापर युग से करते आए हो, अभी भी अगर पश्चाताप किया तो वो ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहा जाएगा। एक सेकंड भी पश्चाताप ना हो, अगर ऐसी अवस्था बनानी है तो कर्म भी ऐसे ही हो। अगर बार 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 उल्लंघन हो रहा है श्रीमत का, तो बार 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 छोटे छोटे पश्चाताप होते रहेंगे, पर हम परिवर्तन नहीं होते। उसके लिए भी कल क्या कहा, व्रत। जो हो गया अब व्रत ऐसा लेना है गहराई से ताकि वो वापस ना हो। तो कोई हिला नहीं सकता, ना प्रकृति माया, ना किसी का संग हिला सकता है। किसी के भी संग में चले जाओ, संसार के सबसे अधिक पतित आत्मा भी आ जाए तो वो भी परिवर्तन हो जाए। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन वायुमंडल को बदलने वाले, वायुमंडल के वश होने वाले नहीं। वो संत हरिदास जो है ना, उसके लिए दिखाते हैं एस्कॉन मूवमेंट है ना, हरे कृष्णा, उनके बड़े मतलब जो बहुत मानते हैं संत हरिदास को, हरिदास के जीवन में दिखाया है कि वो कितनी बार जाप करता था, 16,000 बार एक दिन में, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो एक दिन दिखाया कि उसके दुश्मन एक वेश्या को भेजते हैं उसके पास, तो वो क्या कहता है उसको, तू इधर बैठ, तब तक मैं जाप करता हूँ, तब तक बैठ। और रोज वो आती है और रोज शाम तक बैठ के फिर जाती है, और फिर धीरे धीरे उसको तो नींद आती रहती है, जाप करते रहता है। तो और धीरे धीरे दिखाए उसके संग से वो भी परिवर्तित हो जाती है। वो आई किसी और कार्य के लिए थी, और इतने दिनों में, इतने मास में वो खुद एक योगी बन जाती है। तो उसमें कितनी तटस्थता थी, कितना अपने ऊपर विश्वास, अपनी साधना में लगा हुआ था, कभी एक संकल्प भी नहीं आया उससे बात करो, देखा भी नहीं उसकी तरफ, ऐसी उसकी अवस्था थी। तो ये भक्तों की भी महान अवस्था रही है, विकारों के प्रति एटलीस्ट। तो ना प्रकृति, ना माया, ना किसी का संग, कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन वायुमंडल को बदलने वाले, वायुमंडल के वश होने वाले नहीं, इतनी हिम्मत है ना। तो जहां हिम्मत है वहां बाप की पदम गुना मदद है ही। यह है साहस, यह है हिम्मत। वो हिम्मत अर्थात वो नहीं कि जो युद्ध में जाए और शत्रुओं को हरा के आ जाए, वो कोई साहस ही नहीं है। लड़ाई से जीतना, अपने पास तलवार रखना, ये कोई साहस का प्रतीक नहीं, वो तो कायरता का प्रतीक है, डर है अंदर। सच्चे वीरता तो यह है, इतनी हिम्मत है ना, तो जहां हिम्मत है वहां बाप की पदम गुना मदद है ही। ऐसा अनुभव करते हो ना, एक कदम आपका और पदम गुना बाप का। तो सभी हिम्मत वाले हो या थोड़ा हिलने वाले भी हो, दिल से आवाज निकले क्या हिम्मत के लिए, क्या आप निकले संजय भाई? हिम्मत
खुदा साथ है,
खुदा साथ है तो हिम्मत अच्छे बदते। और हिम्मत, हिम्मत हिम्मत, दिल से आवाज निकले कि हम नहीं हिम्मत रखेंगे तो और कौन रखेगा। यह है हिम्मत। अच्छा तो क्या सुना? ज्ञान बल, योग बल, ये दो बल है, सर्वश्रेष्ठ बल है इस संसार में। इससे ऊपर और कोई बल नहीं है। भक्ति का बल, साइंस का बल, राज्य का बल, सत्ता का बल, जो भी है सब गौण है इसके आगे। ये सबसे दो बड़े बल है और हम सदा विजयी है, सदा विजयी। ये विजय का नशा, जन्मसिद्ध अधिकार का नशा रहना चाहिए। और फिर ये कोई भी बहाना नहीं चलेगा, माया आ गई, संघ ऐसा था वैसा था। पेपर तो आने और नए नए रूप में आएंगे, हर दिन नया रूप होगा उसका। और फिर संघ के लिए सत्संग, एक बाप का संघ, इसको छोड़कर जो भी संघ है सब व्यर्थ है। यहां पर भी जो बाप और बाप की बातें नहीं कर रहे, जो ज्ञान की चर्चा नहीं कर रहे, समझ लेना ये व्यर्थ है। ज्ञान की अतिरिक्त तो जो भी चर्चाएं है, खान पान, ये बनाऊ वो बनाऊ, ये खाऊं वो खाऊं, इधर जाऊं उधर जाऊं, ये खरीदू वो खरीदू, ये जो भी चर्चाएं है सब एक तरफ, सब व्यर्थ की श्रेणी में है। तो विजयी आत्मा है, थोड़ा भी चक्कर में आने वाले नहीं। और लास्ट में कहा खुशी के लिए कि टेस्ट करने तो आएंगे, थोड़ा टेस्ट करने में हर्जा नहीं। एक बाप, एक बल, एक भरोसा, और किसी से सुनने की जरूरत नहीं। और अगर भरपूर है तो जरा भी खालीपन होगा तो और कुछ भरेगा, भरपूर है तो कुछ और भर नहीं सकता। और लास्ट में कहा कोई भी हिला नहीं सकता, ना प्रकृति हिला सकती है, ना माया हिला सकती है, ना किसी का संघ हिला सकता, ना ही कोई वायुमंडल अपना असर कर सकता है। इसमें हिम्मत रखनी है, अगर हिम्मत है तो मदद है। एक कदम आपका, पदम कदम बाप के, तो दिल से आवाज निकले कि हम नहीं हिम्मत रखेंगे तो कौन रखेगा। अच्छा, ओम शांति।